आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप सब अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन कर लीजिए पेज नंबर 209। सो स्टूडेंट्स, ऑन पेज 209 हियर इज योर टॉपिक दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज, द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप। ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ लाइवस्टॉक हैज ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशंस इन लाइवस्टॉक फार्मिंग। दस लाइवस्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। जैसे कि बच्चों, हमने लास्ट ऑडियो में हमारी क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम क्रॉप मैनेजमेंट के प्रोसेस करते हैं, मैन्योर का यूज़, फर्टिलाइजर्स का यूज़, इसी तरीके से किस तरीके से हम पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल फार्मिंग किस तरीके से होती है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बेसिकली हम एनिमल बेस्ड फार्मिंग करते हैं, जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स का इस्तेमाल करके हम फूड की प्रोडक्शन करते हैं। आप मिल्क, एग, मीट, चिकन इन सब चीज़ों को खाते हैं इन योर डेली डाइट। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल बेस्ड फार्मिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कैटल, गॉट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। इसमें हम फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल जैसी अलग अलग साइंस का भी और एस्पेक्ट का यूज़ करते हैं। अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसी के साथ साथ हमारी एनिमल हस्बेंड्री की जो प्रोडक्शन है ये भी इम्प्रूव होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कैटल फार्मिंग। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। बच्चों प्लीज अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। जो कैटल हस्बेंड्री है उसके मेन दो पर्पस है, पहला मिल्क ऑब्टेन करना और दूसरा ये है कि अलग अलग एग्रीकल्चरल वर्क जैसे कि टिलिंग, इरिगेटिंग और कार्टिंग में एक लेबर की तरह यूज करना। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज। हमारे जो इंडियन की कैटल है ये दो अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करती है। वन इज बॉस इंडिकस काउस एंड बॉस ब्यूबलिस बफेलोस। बॉस इंडिकस को हम काउस बोलते हैं एंड बॉस ब्यूबलिस, हम इसको ब्यूबलिस भी बोल सकते हैं और बुबेलिस भी बोल सकते हैं, इसको हम बफेलोस बोलते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स डैट इज डेरी एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स, इट कैन बी कम इन योर एग्जाम इन जस्ट वन वर्ड आंसर। व्हाइल द वंस यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, यानी मिल्क के लिए इस्तेमाल करे गए जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम डेरी एनिमल्स या मिल्च एनिमल्स कहते हैं, और लेबर वर्क के लिए जो यूज होते हैं एनिमल्स उन्हें हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ। जब काफ का बर्थ होता है फ्रॉम द काउ, तो उसके बाद जितने टाइम तक लैक्टेटिंग पीरियड चलता है दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये प्रोसेस जो है इसी पर डिपेंड करता है हमारा मिल्क की प्रोडक्शन उतने ही टाइम तक मिल्क प्रोड्यूस होता है और फर्दर मिल्क की मार्केटिंग होती है. सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड. और अगर हम लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दें, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के जो टाइम पीरियड है इसे अगर हम इंक्रीज कर दें, तो उतने ही ज़्यादा लंबे टाइम तक मिल्क की प्रोडक्शन होगी. एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स, फॉर एग्जांपल जर्सी, ब्राउन स्विस, आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स, व्हाइल लोकल ब्रीड्स, फॉर एग्जांपल रेड सिंधी, साहिवाल, शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस. द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज. हम क्या करते हैं, एक वो स्पीशीज जिसका लैक्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और दूसरी वो स्पीशीज़ जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, हम इनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवा देते हैं. क्रॉस ब्रीड करवाने के बाद फर्दर इनकी जो प्रोजेनी होगी वो हमारे डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ की हमें ऑप्टेन होती है, जिसमें दोनों क्वालिटीज़ आ जाती है. उसका लैक्टेशन पीरियड भी अच्छा होता है और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होती है. Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for humane farming, for the health of the animals and for production of clean milk as well. Animals require regular brushing to remove dirt and loose hair. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अब animals है तो जिस तरीके से humans को हम रखते हैं, हमें वैसे ही animals की भी देखभाल करनी पड़ेगी, उनके proper living, उनका रहने का तरीका, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर हाइजीनिक प्लेस बनाकर रखना, उसे साफ़ सुथरा रखना, क्लीनलीनेस वगैरह, हमेशा रेगुलर उनको ब्रशिंग करके उनकी डर्ट वगैरह, उनके लूज हेयर को रिमूव करना, ये सब काम भी इसी के साथ हमें करने पड़ते हैं. दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्ड शेड्स डेट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड. हमें प्रॉपर तरीके से उन्हें वेल वेंटिलेटेड एक रूफ्ड शेड के अंदर रखना चाहिए, जिसे हम हिंदी में तबेला भी बोलते हैं. The floor of the cattle shed needs to be sloping so as to stay dry and to facilitate cleaning. जो कैटल की फ्लोर है वो थोड़ी सी स्लोपिंग, टेढ़ी होनी चाहिए ताकि वो ड्राई रहे और इसी के साथ हम उसे साफ भी कर सकें. The food requirements of dairy animals are of two types. Basically, ये जो डेयरी के एनिमल्स होते हैं, ये दो तरीके के इनके खाने की रिक्वायरमेंट होती है. A is maintenance requirement, which is the food required to support the animal to live a healthy life. पहला वो खाना कि इनके healthy life को जो support करे, and दूसरा वो खाना which is milk producing requirement, जिसकी मदद से एक अच्छी amount में milk produce हो, which is the type of food required during the lactation period. Animal feed includes A. roughage, which is largely fiber, and B. concentrates, which are low in fiber and contain relatively high levels of proteins and other nutrients. Basically, animals को दो तरह का खाना दिया जाता है, एक वो जिसके अंदर high amount में fiber present हो और दूसरा वो जिसके अंदर other nutrients और nutrients के साथ proteins भी present हो, ताकि proper तरीके से diet हमारे animals को पहुंच सके. Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amounts. Besides such nutritious food material, certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of dairy animals. जो हमारे कैटल है इनको एक balanced amount में एक balanced ration चाहिए होता है, जिसके अंदर हर तरीके के nutrients present हो और वो भी proportionate amount में, ना ज़्यादा ना कम. जैसे हम इनको nutritious food material provide करते हैं, इसी के साथ इन्हें कुछ additives भी देने पड़ते हैं जिसके अंदर micronutrients present होते हैं, जो एक तो इनकी health को promote करते हैं, इनकी growth अच्छी होती है, और दूसरा dairy animals की जो milk productivity है, जो milk output है, वो भी increase कर जाता है. Cattle suffer from a number of diseases. The diseases besides causing death reduce milk production. A healthy animal feeds regularly and has a normal posture. The parasites of cattle may be both external parasites and internal parasites. The external parasites live on the skin and mainly cause skin diseases. The internal parasites like worms affects stomach and intestines, while flukes damage the liver. Infectious diseases are also caused by bacteria and viruses. जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हमारे कैटल अलग अलग टाइप्स के डिजीजेस से भी सफर करते हैं. कुछ की वजह से डेथ भी हो सकती है, या फिर आपके मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो सकती है. एक हेल्दी एनिमल जो होता है वो रेगुलरली फीड करता है और वो भी उसका नॉर्मल पोस्चर रहता है. अब ये जो कैटल के अंदर पैरासाइट्स आ जाते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल. अगर वो एक्सटर्नल होगा तो वो स्किन के अलग अलग तरीके के डिजीज शो करेगा, और अगर वो इंटरनल होगा तो वो स्टमक या इंटेस्टाइन में जाकर डैमेज कर सकता है, या फिर फ्लूक्स जो कि लीवर को डैमेज कर सकते हैं. इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस. वैक्सीनेशंस आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस. बच्चों, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को वैक्सीनेशन दी जाती है, उनको वैक्सीन दी जाती है अलग अलग डिजीज की, सेम एज दैट विद एनिमल्स ऑल्सो. जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं इनको भी वैक्सीनेशन दी जाती है, प्रॉपर डिजीज की वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि वायरल और मेजर बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट इनकी वैक्सीनेशन हो सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैटल फार्मिंग. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broilers for meat. Poultry farming के अंदर basically क्या होता है, हम egg की production करवाते हैं और chicken meat की production करवाते हैं. इसीलिए poultry breeds को improve कराया गया है, ताकि हम एक ऐसी farming को develop करें जहाँ पर surplus amount में eggs और meat develop हो. The cross-breeding programs between Indian, indigenous for example Asil, and foreign, exotic for example like Horn breeds for variety improvement are focused on to develop new varieties for the following desirable traits. हम क्या करते हैं, हम अपनी poultry farming को develop करने के लिए cross-breed करवाते हैं. किसके बीच में? हमारी Indian species Asil और foreign species like Horn के बीच में. बेसिकली डिजायरेबल ट्रेट्स हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स. ज्यादा अमाउंट में चिक्स प्रोड्यूस हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो. सेकंड, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. एक ड्वार्फ छोटा एक ब्रॉयलर पेरेंट हो जो कि कमर्शियल लेवल पे चिक की प्रोडक्शन करे. थर्ड, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर. जो हमारी स्पीशीज है वो ऐसी हो कि वो हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सके. नेक्स्ट, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जिसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो. रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बायो प्रोडक्ट्स. वो ज्यादा से ज्यादा चीपर डाइट्स के अंदर ही यूटिलाइज करके एक अच्छी अमाउंट में हमें आउटपुट दे. Now, egg and broiler production. Broiler chickens are fed with vitamin-rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality. जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो broiler chickens हैं, इनको हम vitamin-rich supplementary food provide करते हैं ताकि इनकी जो growth rate है वो अच्छी हो जाए, और इसी के साथ जो इनकी फीड की एफिशिएंसी है वो भी बेटर हो. प्रॉपर केयर रखी जाती है इनकी मोर्टैलिटी को अवॉइड करने में, और इनकी फेदरिंग और कार्केस क्वालिटी को इंक्रीज करने में. दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस. इन्हें ब्रॉयलर्स के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में सेल करा जाता है, ताकि एक अच्छी अमाउंट में मीट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके. For good production of poultry birds, good management practices are important. अगर हम चाहते हैं कि हमारी poultry birds की production अच्छी हो, तो उसके लिए हमें गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा. दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस एंड हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट. ये दो तरीके से हो सकता है. जहां पर हमने इन एनिमल्स को रखा है हम वहां पे प्रॉपर एनवायरमेंट मेंटेन करके रखें जैसा इन्हें चाहिए. दूसरा, हम इनको डिजीज और अलग अलग तरह के पेस्ट से प्रिवेंट करें, इनको बचाएं अलग अलग बीमारियों से. द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स. बेसिकली इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग होती है एज दोज ऑफ एग लेयर्स. जो अलग अलग एनिमल्स एग ले करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, और जो सिर्फ चिक्स को ले करते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. द रशियन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट. द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड. पोल्ट्री फॉल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशियंसीज. दीज नेसेसिटेट प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स. अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग है इसके अंदर कई तरह के डिजीज होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये अलग अलग तरह के जो पैथोजन्स हैं ये डिजीज को बढ़ावा देते हैं. लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग सैनिटेशन रखें, वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट को रेगुलर इंटरवल पे स्प्रे करते रहेंगे, प्रॉपर वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे, तो हम इन सब डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिश प्रोडक्शन. अब हम इस टॉपिक में फिश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आर फूड. फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिंड ट्रू फिश एज वेल एज शेलफिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलस्क. देर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश. वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स व्हिच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग. द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग व्हिच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी. बेसिकली ये प्रोसेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम नेचुरल तरीके से मछलियों को पकड़े, या फिर दूसरा ये है कि हम फिश फार्मिंग करें, डेट इज कल्चर फिशरी. द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर. वो किसी भी पानी में ग्रो कर सकते हैं, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो. फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेराइन फिशरीज के बारे में. इंडियाज मेराइन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट. पॉपुलर मेराइन फिश वेराइटीज इंक्लूड प्रॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सेडाइंस एंड बॉम्बे डक. ये वो अलग अलग स्पीशीज है फिशेज की जिन्हें हम या तो कल्चर करते हैं या फिर जिन्हें हम पकड़ते हैं. Marine fish are caught using many kinds of fishing nets from fishing boat. Yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and eco sounders. Some marine fish of high economic value are also farmed in sea water. This includes finned fishes like mullets, betki, and pearl spots, shellfish such as prawns, mussels, and oysters, as well as seaweed. Oysters are also cultivated for the pearls they make. तो बेसिकली अलग अलग स्पीशीज है जिनको हम पकड़ते हैं या उन्हें कल्चर करते हैं, और इन सबके अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, नीड है और यूजेस हैं. As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture. So this is very important. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अगर धीरे धीरे मेराइन फिश का स्टॉक खत्म होता जाएगा और फिश की डिमांड तो इंक्रीज कर रही है, तो हमें कल्चर फिशरीज का काम करना पड़ेगा, जिस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं मैरी कल्चर. नाउ सेकंड इज इनलैंड फिशरीज. फ्रेश वाटर रिसोर्स इंक्लूड कैनाल्स पॉन्ड्स रिजर्वायर्स एंड रिवर्स ब्रैकिश वाटर रिसोर्स वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टूगेदर सच एज estuaries and lagoons are also important fish reservoir. While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. Most fish production from these resources is through aquaculture. Basically, हम aquaculture के through भी अपनी fishes को caught कर सकते हैं. अलग-अलग reservoir जैसे कि pond, canal, rivers, इनके अंदर भी हम fishes को पकड़ते हैं. Fish culture is sometimes done in combination with the rice crop. So that fish are grown in water in the paddy field. More intensive fish farming can be done in composite fish culture system. Both local and imported fish species are used in such systems. In such a system, a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond. ऐसे में हम क्या करते हैं? हम एक fish pond में 6, 5 या 5 से 6 अलग अलग मछलियों की स्पीशीज को यूज करके उन्हें हम वहां पर जो है वहां पर रखते हैं. दीज स्पीशीज आर सिलेक्टेड सो डैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड अमंग देम हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स. एक्चुअली ये जितनी भी स्पीशीज है इनकी फूड हैबिट्स अपनी अलग अलग होती है, इसीलिए आपस में इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है वहां पर रहने का. एज अ रिजल्ट The food available in all the parts of the pond is used. इसीलिए pond में जितना भी खाना होगा वो हर fish के लिए proper amount में present होगा उनके requirements के according. As catless are surface feeders, rohas feed in the middle zone of the pond. Mrigals and common carps are bottom feeders and grass carps feed on the weeds. Together, these species can use all the food in pond without competing with each other. This increase the fish yield from the pond. और इस तरीके से हम अपने fish yield को increase कर सकते हैं. ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जो हम हमारे aquaculture, मैरीकल्चर में अपना सकते हैं या फिर हमारे culture fisheries में अपना कर अपने yield को increase कर सकते हैं. One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well. So, a major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seed. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इसमें एक problem है. Composite fish culture के अंदर जो fish breed है वो कई बार सिर्फ monsoon season में होती है. यहाँ तक कि जो fish seed है अगर हम उसे wild से collect भी कर लें और उसे हम दूसरी स्पीशीज के साथ मिक्स कर दें, लेकिन वहां पर एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड, कि वहां पर अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं हैं. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेज हैव नाउ बीन वर्कड आउट टू ब्रीड दीज फिश इन पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिम्युलेशन. दिस हैज एंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटीज. अगर हम हार्मोनल स्टिम्युलेशन कर दें तो इसकी मदद से क्या होगा, प्योर फिश सीड एक अच्छी अमाउंट में डिजायर्ड क्वांटिटीज के साथ हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी कि किस तरीके से कल्चर फिशरीज को हमें डेवलप करना है और उसे मेंटेन करके रखना है. तो ये था आपका फिशरीज के बारे में कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग होती है, इसके अलग अलग प्रैक्टिसेस क्या है, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक है मैराइन फिशरीज और दूसरा है इनलैंड फिशरीज. इसके अंदर अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है कि या तो हम कल्चर फिशरीज करें, मैरी कल्चर, एक्वा कल्चर, या फिर हम एक ही पॉन्ड के अंदर 6 या फिर ज़्यादा स्पीशीज को रखें जिनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बी कीपिंग. तो बच्चों ये था आपका फिश प्रोडक्शन के बारे में, अब हम बी कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज बी कीपिंग. बेसिकली बी कीपिंग इज ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि मधुमक्खियों के बारे में. हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज. जो शहद होता है डेट इज हनी, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इस समय मार्केट में यूज हो रहा है। इसीलिए बी कीपिंग यानी हनी की प्रोडक्शन के लिए जो बी कीपिंग है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट्स, फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। जैसा कि देखा जाए जो बी कीपिंग है इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इसीलिए फार्मर्स आजकल क्या करते हैं, इसे एक एडिशनल इनकम का सोर्स बना के यूज करते हैं। इन एडिशन टू हनी द बीहाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स विच इज यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशंस। हनी तो हमें प्रोड्यूस होकर मिलता ही है, लेकिन हनी की प्रोडक्शन के साथ बीहाइव्स से यानी मधुमक्खी के छत्तों से हमें एक वैक्स भी मिलता है। वैक्स जो है वो हमारी मेडिसिनल प्रिपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिनल प्रिपरेशंस का मतलब होता है अलग अलग मेडिसिंस को प्रिपेयर करने में इस बी वैक्स का यूज किया जाता है। द लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस सिरेना इंडिका। ये नाम आपको रिमेम्बर करना है कि जो लोकल वेराइटी है बी की, जिसके मदद से हम कॉमर्शियल लेवल पे हनी को प्रोड्यूस करवाते हैं, उसका नाम है एपिस सिरेना इंडिका, जिसको हम इंडियन बी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज एपिस डॉर्सेटा द रॉक बी एंड एपिस फ्लोरे द लिटिल बी। ये तीन अलग अलग स्पीशीज हैं। एन इटालियन बी वेराइटी अमेलीफेरा दैट इज एपिस मेलीफेरा हैज ऑल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। इन तीन स्पीशीज के साथ एक इटालियन वैरायटी को भी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, डेट इज एपिस मेलीफेरा, जिसकी मदद से हम हनी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द वैरायटी कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। बेसिकली जो इटालियन बीज होती है इनकी हनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। They sting somewhat less. They stay in a given beehive for long periods. ये कम sting करते हैं। Sting का मतलब होता है ये किसी को ज़्यादा काटते भी नहीं है, और दूसरा ज़्यादा लंबे time तक ये एक ही दिए गए छत्ते के अंदर रहते हैं। And breed very well. For commercial honey production, bee farms or apiaries are established. Basically, commercial level पे honey को produce करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पर एपियरीज को एस्टेब्लिश करते हैं या फिर बी फार्म्स को एस्टेब्लिश करते हैं। एपियरीज वर्ड से ही बना है एपिकल्चर, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ हनी और बी कीपिंग। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पेस्टरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। अगर हम हनी की क्वालिटी की बात करें तो हनी की क्वालिटी डिपेंड करती है कि जितने भी बीज हैं उन्हें किस टाइप के फ्लावर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, उस फ्लावर का नेक्टर कैसा है, देन आफ्टर दैट जो फ्लावर के अंदर पॉलन्स प्रेजेंट है वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी हनी की क्वालिटी कैसी होगी। इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पेस्टरेज द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। कैसे फ्लावर्स हमने प्रोवाइड करे हैं बीज को उसके अकॉर्डिंग हमारे हनी का टेस्ट होगा। वेदर इट विल बी गुड और वेदर इट विल बी मॉडरेट, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फ्लावर्स वी प्रोवाइड और इज अवेलेबल फॉर द बीज टू कलेक्ट नेक्टर और पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स। तो इस तरीके से बी कीपिंग का प्रोसेस होता है जिसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। तो बच्चों आप कहीं पर लिख लो बुक के ऊपर, एक्चुअली बुक में मेंशन नहीं है कि बी कीपिंग का ये जो प्रोसेस है इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं एपीकल्चर, APICULTURE, दैट इज एपीकल्चर। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आपका होमवर्क है, आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने रिवाइज करना है एंड लर्न करना है। और इसी के साथ जितने भी अलग अलग स्पीशीज के नेम्स हैं, जैसे कि बीज के नेम है, फिशेस के नेम है, और इसी के साथ जो हमने कैटल फार्मिंग में अलग अलग स्पीशीज के नाम पढ़े हैं, आपने इन सभी नेम्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके पेपर में वन वर्ड टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। इस ऑडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।